ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। इस साल मानसून के कारण 20 लाख लोगों के दुष्प्रभावित होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का है अनुमान। इनमें से 10% लोगों को पड़ सकती है राहत और उद्धार कार्य की जरूरत। मस्तिष्क मृत व्यक्ति से ली गई किडनी और लीवर का शहीद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र में हुआ सफल प्रत्यारोपण। विश्व में दुर्लभ माने गए ऐसे प्रत्यारोपण में नेपाल की है ये पहली सफलता। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आंधी के कारण 20 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल मॉनसून से देश में 4.5 लाख घरों के करीब 20 लाख लोगों के बुरी तरह प्रभावित होने का अनुमान किया है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने इस बात का उल्लेख किया है। प्राधिकरण ने सभी विषय वस्तुओं का विश्लेषण कर तैयार की गई प्रस्तावित मॉनसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रीय कार्ययोजना 2082 में इस बात का उल्लेख किया है। प्राधिकरण के प्रवक्ता राम बहादुर केसी ने बताया कि दुष्प्रभावितों में से 10% लोगों को तो उद्धार और राहत कार्य की जरूरत भी पड़ सकती है। उन्होंने आगे बताया कि जेठ 14 गते के लिए निर्धारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति की बैठक में कार्ययोजना पेश होगी और उसी बैठक से यह पारित होने के बाद क्रियान्वयन में जाया जाएगा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि कर्णाली प्रदेश का पूर्वी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश का उत्तरी भूभाग और गंडकी प्रदेश का ज्यादातर हिस्से बारिश से अधिक प्रभावित होंगे। विभाग के मुताबिक इसी जेठ के 18 गते से लेकर आश्विन 14 गते तक के 4 महीने की अवधि में देश के ज्यादातर हिस्सों में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान भी औसत से अधिक रहने की संभावना है। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र ने नेपाल में पहली बार मस्तिष्क मृत व्यक्ति से निकाली गई किडनी और लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया है। केंद्र द्वारा आज भक्तपुर में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र के कार्यकारी निदेशक डॉ पुकार चंद्र श्रेष्ठ ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसी जेठ 1 गते मस्तिष्क मृत हो चुके 18 वर्षीय पुरुष से 2 किडनी और 1 लीवर प्राप्त होने के बाद काठमांडू मेडिकल कॉलेज द्वारा निकाले गए उन अंगों में से 1 किडनी और लीवर को 1 व्यक्ति में और दूसरी किडनी दूसरे व्यक्ति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। केंद्र के कार्यकारी निदेशक डॉ श्रेष्ठ ने बताया कि विश्व में दुर्लभ माना गया ऐसा प्रत्यारोपण नेपाल के लिए पहली सफलता है। बता दें कि केंद्र अब तक 3 साल के बच्चे से लेकर 68 साल तक के व्यक्ति समेत 34 लोगों में लीवर प्रत्यारोपित कर चुका है। विषाक्त मशरूम खाने से बीमार पड़े इलाम मांगसेबुंग के एक ही वार्ड के 3 लोगों की मौत हो गई। विषाक्त मशरूम खाने के कारण मरने वालों में मांगसेबुंग गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के 55 वर्षीय अमर लावती, 25 वर्षीय मनीषा लिंबू और 17 वर्षीय नुमा लावती शामिल हैं। बता दें कि 6 दिन पहले चाय के बगान में ऐसे ही जन्मे मशरूम खाकर वे लोग अचानक बीमार पड़ गए थे। उनमें से मनीषा और नुमा की इससे पूर्व ही विराट नर्सिंग अस्पताल विराटनगर में मौत हो गई थी। वहीं अमर लावती की आज BNC अस्पताल में मृत्यु हो गई। विद्यालय शिक्षा विधेयक पर विमर्श के लिए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने 1 और हफ्ते का समय मांगा है। शिक्षा समिति की आज की बैठक में विद्यालय शिक्षा विधेयक पर विमर्श के दौरान शिक्षा मंत्री रघुजी पंत ने शिक्षकों की मांग संबोधन के विषय में नेपाल शिक्षक महासंघ के साथ विचार विमर्श को जारी बताते हुए 1 हफ्ते के समय की मांग की। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए 9 दिवसीय चीन दौरे पर आज बीजिंग पहुंची हैं। प्रतिनिधिमंडल में नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी, एमाले नेता कर्ण बहादुर थापा लगायत शामिल हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने बेल्जियम के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत सेवा लम्साल को लग्जमबर्ग के लिए और जर्मनी के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत डॉ शैल रूपा खेती को होली सी के लिए गैर आवासीय राजदूत की जिम्मेदारी सौंपी है। राजदूत रूपा खेती को पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया और स्लोवाक के लिए भी गैर आवासीय राजदूत की जिम्मेदारी दी गई है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शनिवार शाम चली तेज आंधी और भयंकर बारिश के कारण 20 लोगों की मौत हो गई। इसमें करीब 150 लोग घायल भी हो गए। तूफान के कारण सड़क और एयर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ गए। तूफान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान पहुंचाया ही, बल्कि कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर मौतें जर्जर घरों के ढहने या गिरे हुए बिलबोर्ड के नीचे दबने के कारण हुई। मरने वाले लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। तेज हवाओं और ओलों का असर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी देखने को मिला। फसलों और पावर लाइन को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि यहां से किसी की मौत की खबर नहीं आई। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारतीय नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए इसकी पुष्टि की है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है। बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, भारत अब 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है और ये उनका डेटा नहीं बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आंकड़ा है। उन्होंने कहा, आज भारत जापान से बड़ा है, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़े हैं और योजना के अनुसार भारत आगे बढ़ता रहा तो अगले 2.5 से 3 सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुब्रमण्यम ने कहा, भारत एक ऐसे चरण में है जहां ये बहुत तेजी से विकास कर सकता है, जैसा कि पहले कई देशों ने किया है। यूक्रेन में रात भर हुए रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 12 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया है कि इन हमलों में 30 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले में यूक्रेन के पश्चिमी खमेलनित्स्क की क्षेत्र में 4 मौतें हुई हैं। वहीं कीव क्षेत्र में 3 और दक्षिणी शहर माइकोलाइव में 1 मौत की सूचना है। यह हमला कीव पर रूस के अब तक के सबसे भीषण हमलों के ठीक एक दिन बाद हुआ है। शनिवार को हुए इन हमलों में यूक्रेन में 13 लोगों की मौत हो गई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने शनिवार रात 4 घंटे के दौरान मॉस्को सहित कई रूसी क्षेत्रों में 95 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण मॉस्को के हवाई अड्डों पर सभी उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इस साल मॉनसून के कारण 20 लाख लोगों के दुष्प्रभावित होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का है अनुमान। इनमें से 10% लोगों को पड़ सकती है राहत और उद्धार कार्य की जरूरत। मस्तिष्क मृत व्यक्ति से ली गई किडनी और लीवर का शहीद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र में हुआ सफल प्रत्यारोपण। विश्व में दुर्लभ माने गए ऐसे प्रत्यारोपण में नेपाल की है ये पहली सफलता। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आंधी के कारण 20 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।